पहाड़ों मेरा जीवन किस्त 21। मृत्यु से दूसरा साक्षात्कार हुआ जब यशोदास मेरी आंखों के सामने डूबा। जौकी ताल का मैं आप लोगों को आखिरी किस्सा बताने जा रहा हूँ। आखिरी इसलिए भी क्योंकि इसके बाद जौकी ताल को हमेशा के लिए त्याग दिया गया। मैंने इसलिए त्यागा क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि यशोदास जो मेरी आंखों के सामने उसमें डूबा था कि आत्मा ताल पर ही भटक रही होगी। पहाड़ों में सूर्य ढल जाने के बाद ऐसा सन्नाटा खिंच जाता था, मेंढकों और जाने कहाँ बैठे हुए झिंगरों की ऐसी आवाज़ आने लगती थी कि मैं घर से 30-40 मीटर फासले पर अपने मकान मालिक के घर जाने के लिए भी डर के मारे माँ को दरवाजे पर खड़ा कर तब तक आवाज़ लगवाता था जब तक कि मैं उनके घर के भीतर दाखिल न हो जाऊँ। तो ऐसे डरपोक लड़के के लिए अपने सहपाठी को निगल जाने वाली ताल में नहाने का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता था। जिस दिन यह दुर्घटना घटी मैं दूसरे दिनों की तरह स्कूल से घर आने के बाद ताल में चला गया था जहां हम कई तरह के खेल खेला करते थे। उन दिनों आजकल की तरह मोबाइल नहीं हुआ करते थे जिन पर आजकल के बच्चे अपना सारा समय खर्च करते हैं, और न ही तब तक कंप्यूटर गेम ही आए थे। खेलने का मतलब था घर से बाहर खुले आकाश के नीचे ज़मीन पर दौड़ना, पानी में तैरना या कुछ भी ऐसा करना जिसमें दम या दिमाग लगाना पड़े। ठुलीगाड़ के पास जो कासनी नामक गांव है वहां के भी कुछ लड़के खेलने आ जाते थे। कुछ और लड़के ठुलीगाड़ के सामने के पहाड़ के पीछे फौजी क्वार्टरों में रहते थे, वे भी हमें देखकर ताल की ओर चले आते थे। यशोदास भी इसी पहाड़ी के पीछे रहता था और पैदल ही घर जाया करता था। उस दिन हमें ताल में खेलता देख वह भी आ गया। हम 5-6 लड़के थे जिनमें से एक कासनी गांव का राजेंद्र सिंह भी था। वह हमसे उम्र में बड़ा था और शायद 2 क्लास सीनियर भी था। वह गांव के दूसरे लड़कों की तरह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था। तैराकी में भी वह हम सबकी तुलना में कहीं बड़ा तुर्रम खान था। मुझे लगता था कि वह हमसे छुपाकर बीड़ी सिगरेट भी पीता था। बहरहाल जौकी ताल में जिस ओर से गाढ़ का पानी आता है वहाँ एक बड़ी चट्टान है जिससे पानी नीचे उतरकर ताल में बदल जाता है। हम इसी चट्टान पर फिसलते हुए कुछ क्षण के लिए ताल के किनारे रुकते और पानी में डाइव मारकर ताल के दूसरे छोर पर ही निकलते। जब डाइव मारते तो हम ताल के तले तक पहुंच जाते। हम इस काम में इतने पारंगत हो गए थे कि ऊपर से 50 पैसे और 1 रुपये का सिक्का ताल में कहीं भी फेंक कर उसे जरा सी देर में खोज ले आते। यशोदास बहुत तल्लीन होकर हमारा यह खेल देख रहा था। संभवतः उसे यह एक ओर से डाइव मार कर दूसरी ओर पहुँचना बहुत आसान लगा क्योंकि हम मजाक में ही ऐसा कर रहे थे। मैं अपने खेल में मशगूल था। हमें पता ही नहीं चला कि कब यशोदास ने हमारी तरह ताल में डाई मारी, पर वह दूसरे छोर पर इतनी दूर न पहुंच सका कि जहां उसके पैर ज़मीन पर लग जाते और नाक पानी से बाहर रहती। कुछ इंच मात्र का फासला रहा होगा। मेरी जब यशोदास पर नज़र पड़ी तो वह पानी में हाथ मार रहा था। उसका सिर पानी से ऊपर आया और वह फिर नीचे गया। राजेंद्र सिंह ने यशोदास को डूबता देख तुरंत पानी में कूद लगाई और अगले ही क्षण वह उसे बाहर खींचने लगा। अभी तक भी माहौल खेल और मजाक का ही था। एक दो हाथ मारने की बात थी, दोनों के पैर ज़मीन पर लग जाते और हम यशोदास को लानत भेजते। पर आज जौकी ताल में जो वह होना था जो वहाँ पहले कभी न हुआ था। राजेंद्र यशोदास को बाहर खींचने के लिए जैसे ही उसके करीब गया उसने उस अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उस दिन मालूम चला और मैं यह सबक आज तक नहीं भूला हूँ कि डूबते हुए आदमी को कभी सामने से नहीं बचाना चाहिए क्योंकि वह जिसे पकड़ लेता है प्राण चले जाते हैं पर उसे छोड़ता नहीं। इसलिए डूबते हुए आदमी को हमेशा पीछे से धकेलना चाहिए। यशोदास ने राजेंद्र को इस तरह जकड़ा कि अब यशोदास के साथ साथ राजेंद्र भी पानी के भीतर बाहर होने लगा। अब तक मैं चौकन्ना होकर किसी अप्रिय घटना की आशंका से ग्रसित हो चुका था। मैं दौड़कर ऊपर चला गया जहां से हम जौकी ताल में कूद लगाया करते थे। नीचे राजेंद्र और यशोदास ऊपर आकर बार बार नीचे जा रहे थे। वे ताल के उथले छोर से उसके गहरे छोर की ओर भी खिसकने लगे थे। जाने कौन सी ताकत उन्हें खींच रही थी। मुझे माँ की बात याद आ रही थी जो अक्सर मुझे डराने के लिए ठुलीगाड़ को एक डायन बोलती थी जिसे हर साल एक ना एक बलि तो चाहिए ही होती है। कहीं डायन ही तो नहीं खींच रही दोनों को। मैं ऊपर से सांस रोककर देख रहा था। कुछ देर तक एक साथ ऊपर नीचे होने के बाद अब दोनों के हाथ बहुत तेज़ी से चलने लगे थे जैसे उनकी तड़प बढ़ती जा रही हो। अब दोनों खिसकते खिसकते ताल के गहरे छोर पर पहुंच गए थे। फिर ऐसा हुआ कि दोनों पानी के भीतर चले गए और अचानक ताल निशब्द होने लगी। पता चल रहा था कि राजेंद्र की सांसें भी उखड़ रही हैं। पर तभी राजेंद्र का सिर पानी से बाहर निकला, एकदम लाल उसका चेहरा। वह छपाके मारते हुए किनारे आया, वहीं उसने उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म रखी थी। उसने एक हाथ से यूनिफॉर्म पकड़ी और दूसरे में से जूते, और वह गाड़ के किनारे ही दूसरी ओर भागकर पहाड़ चढ़ने लगा। उसे यूँ भागता देख मैं भी घबरा गया। आनन फानन मैं भी कपड़े उठा, अपने घर की ओर भागा। देखते ही देखते बाकी लड़के भी भाग खड़े हुए। हमें यूँ भागता देख मुख्य सड़क पर जा रहे लोगों ने किसी ने पूछ लिया होगा कि हुआ क्या। भागते भागते ही किसी के मुँह से निकला डूब गया। मैं इतना डर गया था कि घर के अंदर न जाकर बाहर एक बिजली के खंभे के पीछे छिप गया और वहीं से ताल के आसपास की गतिविधि देखता रहा। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। एक अपराध बोध भी था कि जैसे मैंने ही अपनी गलती से यशोदास को डुबो दिया। मेरे कान में साएं साएं हवा बज रही थी। मैं इतना डरा हुआ था कि अंदर से कि किसी भी आवाज़ से मुझे झस हो जा रही थी। ऊपर से अमा ने मुझे देखकर आवाज़ लगाई तो मैं डरा। बूबू अपने कमरे में खासे तो मैं डरा। 15-20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर MES कॉलोनी में पता नहीं कैसे बात पहुंची। थोड़ी देर में लोग जौ के ताल के पास जमा होने शुरू हुए। लकड़ी की सीढ़ी लाई गई, रस्सी लाई गई। मैं दूर से ही देख रहा था। करीब 2 घंटे तक बाद यशोदास की लाश निकाली गई। असल में वो पानी के भीतर चट्टान की एक ओट में फंस गया था, जहाँ से खींचकर उसे बाहर निकालने में बहुत समय लगा। इस दौरान मेरे घर वालों को भी मालूम चल गया था कि वहाँ क्या हुआ है। मुझे तुरंत घर के अंदर बुलवा लिया गया। यशोदास इकलौती संतान थी, उसके पिता सेना में सूबेदार थे। मैंने उसके माता पिता के दुख के बारे में भी सोचा। स्कूल में अगले दिन कई दिनों तक यशोदास के बारे में बातें हुई। माँ ने मेरे गाड़ में जाकर नहाना बहुत शक्ति के साथ प्रतिबंधित कर दिया। अब सुबह संडास के लिए भी उस ओर नहीं जाना था। नई जगह तलाशी गई जहाँ मुझे दलदल में उतरना पड़ता था। दलदल से तो मैं फिर भी निपट लेता, लेकिन यहाँ से आप सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों की नज़र के दायरे में आ जाते थे। परेशानियाँ थीं, पर यशोदास की ऐसी मृत्यु के बाद सभी बहुत सहम गए थे। मुझे कई सालों तक यशोदास की मृत्यु की याद रही। मृत्यु की बात होते ही मुझे तुरंत यशोदास याद आ जाता। यह अपने 2 साल के छोटे भाई के बाद मृत्यु से मेरा दूसरा साक्षात्कार था। अनजाने ही इस मृत्यु ने मुझे जीवन और मृत्यु के बीच के जरा से फासले का एहसास करवाया। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मगर यशोदास की मौत से मिले सबक के चलते ही कई सालों बाद मैं हरिद्वार में के तेज बहते पानी में डूबते अपने दोस्त की जान बचा पाया। पर वह किस्सा कभी बाद में। अभी यह कि अगर यशोदास 1 फुट और किनारे की ओर खिसक गया होता तो बच जाता। इस सृष्टि में कितनी मौतें सिर्फ इस अगर के चलते हो जाती हैं।